ओम शांति। एक बहुत प्रसिद्ध चोर, एक जेब कतरा, जिसने अपने शातिर दिमाग से, हुनर से कुछ ही समय में बहुत धन इकट्ठा कर लिया था, ऐसा एक जेब कतरा एक दिन सोचता है कि आखिर कब तक इस तरह यूं ही अकेला अकेला जीवन बिताऊं, क्यों ना मैं शादी कर लूं। पर शादी भी करूं तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरे ही समान हो, तो उसे ऐसी ही एक जेब कतरी मिल जाती है और दोनों की बहुत जमती है और दोनों मिलकर बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाते हैं। और जब बिजनेस बहुत बढ़ जाता है और बहुत धन उनके पास आ जाता है, बड़ा सा घर बन जाता है, सोचते हैं एक बच्चा भी होना चाहिए, मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना पाठ करते हैं कि हे प्रभु, ऐसा कोई बच्चा देना जो इस दुनिया का सबसे बड़ा जेब कतरा हो। न भूतो न भविष्यति, परमात्मा की अनुकंपा हो जाती है और एक बच्चा जन्म लेता है। पर दुर्भाग्य की बात कि बच्चा जो आया है उसकी मुट्ठी बंद है। सोचते हैं बंद मुट्ठी वाला जेब कैसे कतरेगा, दुखी होते हैं, कई चिकित्सकों के पास उसे ले जाते हैं। चिकित्सक कहते हैं ये हमारे वश की बात नहीं है, इसकी मुट्ठी खोलनी, इसे तुम किसी मनोरोग तज्ञ के पास ले जाओ, साइकियाट्रिस्ट। मनोरोग तज्ञ उस बच्चे की मुट्ठी को देखता है, खोलने की कोशिश करता है, नहीं खुलती है, सोचता है कुछ और उपाय होना चाहिए। और वो मनोरोग तज्ञ कहता है एक बहुत बेशकीमती हार ले आओ। हो सकता है हार को देखकर ये बच्चा अपनी मुट्ठी खोल ले, तो वो बहुत मूल्यवान हार लेके आते हैं और जैसे ही बच्चा हार को देखता है मुट्ठी खोल लेता है। पर आश्चर्य तो तब है जब उसकी मुट्ठी से एक सोने की अंगूठी निकलती है। वो उस नर्स की होती है, जब वो डिलीवरी हो रही थी तब उसने चुराई थी। सुबह की साकार मुरली, बाप कहते हैं कि बाबा तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाते हैं, तुम बाप से भी सीखे चले जाते हो। तो हर माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बेटा हमारे जैसा बने, या फिर ये सोचते हैं कि हमारा बेटा हमसे भी आगे चला जाए। कहानी शायद काल्पनिक भी होगी, परंतु हर पिता की ये इच्छा होती है कि हमारा बेटा, हमारे बच्चे हमसे भी आगे चले जाए। और बाबा भी बार बार कहता है कि तुम्हें बाप समान समान संपूर्ण बनना है। अभी अभी मुरली चली इसी हॉल में, नवजीवन देने वाला बाप किसको देखता है, जिन्होंने नव जीवन धारण किया है, नवीन जीवन जिन्होंने धारण किया, ऐसे बच्चे को, बच्चों को बाप देखते हैं। दुनिया वाले भी नया साल मनाते हैं, तुम मनाते हो, तुम बधाइयां देते हो और तुम खुशखबरी भी देते हो। सतयुग तुम्हारा वर्षा है, अधिकार है, सौगात है, ये निश्चय है, ये निश्चित है और ये अटल भावी है। अभी अभी मुरली चली है तो बाबा भी हम सबको बहुत आगे देखना चाहता है। पुराना वर्ष बीत गया, नया वर्ष चालू हुआ है, साथ साथ अव्यक्त मास भी चालू हुआ है। 19 खत्म, 20 चालू। 19 और 20 में 19 और 20 का अंतर ना हो, 19 और 20 में बड़ा अंतर हो। 19 अर्थात जब हम एक है तो 9 गुना मेहनत करनी पड़ती है, और 20 अर्थात जब हम 2 है कंबाइंड, 0 एफर्ट्स, 2 0। 19 और 20 में एक का अंतर है, जो काम हमने 19 में बाप के बगैर किए वो 20 में बाबा के साथ करने हैं। तो ये जो मुरली चली, हम कहेंगे ये एक ऐतिहासिक मुरली है, जिसमें एक ऐसा मंत्र बाबा ने दिया है, एक ऐसा मंत्र, 5 अक्षरी मंत्र, एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र जो शायद इस आशय से, इस रीति से आज तक किसी भी मुरली में नहीं आया है। और वो मंत्र कौन सा है, सब हमारे साथ बोलेंगे, बाबा मेरे, बाबा मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। ये 5 अक्षरी मंत्र है जो बाबा ने इस मुरली में दिया है। देखने में दिखता है ये कोई भक्त है, जो बाबा ऐसा तो कभी सिखाते नहीं कि बाबा आओ और मदद करो, परंतु ये भक्तों का मंत्र नहीं है, ये किसी याचना का स्वरूप नहीं है, यहां पर अधिकार है। हम उसे पुकार जरूर रहे हैं परंतु भीख नहीं मांग रहे, कोई याचिका नहीं, अधिकार है। बाबा मेरे साथी, आ जाओ और क्या करो, मदद करो। आत्मा अधिकार से मांग रही है और मंत्रों में बहुत गुप्त शक्ति होती है। द चैंटलेस चैंट, अजपा जाप, इसका होता रहे सुबह से लेकर रात तक, हर छोटे कार्य में, हर मन की स्थिति में। ये मंत्र मन की स्थिति का वायुमंडल तैयार करेगा और बहुत सूक्ष्म मंत्र है। इससे पहले कि हम आगे की चर्चा में जाएं, एक और बात, एक बहुत धार्मिक नीतिपरायण राजा एक ऐसे योगी और ऋषि के बारे में सुनता है जो बहुत सिद्ध है, और उसे अपने राजमहल में बुलाता है और कहता है कि मैंने आपके विषय में बहुत सुना है, आप मुझे कोई एक ऐसा मंत्र दे दीजिए कि जिसका मैं जाप करूं और मेरा उद्धार हो जाए। और वो ऋषि उसे मंत्र दे देता है और वह राजा मंत्र जाप चालू करता है, पर जिस दिन से मंत्र जाप करता है हर दिन रात में डरावने सपने आने लगते हैं, इतने भयंकर स्वप्न। उसे देख, वो देखता है कि मैं कैदी बन गया हूं, वो देखता है कि मुझे मारा जा रहा है, वो देखता है कि मेरे ही लोग मेरे विरुद्ध हो गए, सारी प्रजा षड्यंत्र कर रही है, मेरे अपने मेरे विद्रोह में खड़े हैं। रोज एक ही स्वप्न देखता है, 15-20 दिन तक वो एक ही स्वप्न बार बार आते रहता है। कभी दिखाई देता है मेरे ही सेनापति और मेरे ही सैनिक मेरे विरुद्ध है, और इतनी तकलीफ होती है उसे उस स्वप्न में कि अब उसे रहा नहीं जाता, दौड़ा दौड़ा जाता है उस साधु के पास, उस योगी के पास, कहता है ये तुम आपने हमको क्या मंत्र दे दिया, जब से मंत्र दिया है तब से परेशान हूं, दुखी हूं, एक ही स्वप्न बार बार आता है। वो साधु चुप ही बैठता है, कुछ खास बोलता नहीं। राजा थोड़ी देर वहां रुकता है, वापस चला आता है और फिर वही वही स्वप्न। सोचने लगता है कहीं ये स्वप्न सत्य तो नहीं, अपने बहुत करीबी साथियों को मंत्रियों को बुलाता है और पूछता है जाओ जाकर देखो ये सेनापति क्या कर रहा है। तो पता चलता है कि सेनापति दूसरे सैनिकों के साथ मिलकर वास्तव में षड्यंत्र कर रहा है। और जैसे ही राजा को यह खबर होती है तुरंत उस सेनापति को पकड़ा जाता है और कालकोठरी में डाल दिया जाता है। ये सब होते होते 20 दिन हो जाते हैं। राजा फिर उस साधु के पास जाता है और पूछता है ये सब क्या था। वो साधु कहता है तुम्हारे भाग्य में था कि 20 मास तुम काल कोठरी में रहो, 20 मास तुम्हें बहुत यातनाएं सहन करनी थी, परंतु क्योंकि तुमने उस मंत्र का जाप किया वो सारी 20 मास की यातनाएं 20 रातों में ही पूरी हो गई केवल। और ये सारा हुआ उस मंत्र के प्रभाव से, क्योंकि मंत्र बहुत सूक्ष्म तल पर काम करता है। तो इसी तरह जो मंत्र बाबा ने दिया है ये पूरे साल का मंत्र हम इसे बना लेंगे। अब बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो। इसे केवल जपना नहीं है, अनुभव करना है। जब तक अनुभव नहीं तब तक इस आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी प्राप्ति नहीं। तो 19 बीत गया, 20 आया है। इस 20वें वर्ष में हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा जो अब तक की कमियां हैं, अब तक की कमजोरियां, वो संस्कार जो सब कुछ करने के बाद भी नहीं मिट रहा, जो हर पुरुषार्थ हर भट्टी के बाद भी वैसे के वैसे रहा हुआ है, उस विकार को, उस संस्कार को, उस आदत को, उस हैबिट को, उस एडिक्शन को पकड़ना है और उसे निष्कासित करना है ब्राह्मण जीवन के राज्य से। सुबह की मुरली में था ये जो भूत है इन सबको निकाल दो, भूत विहीन ये ब्राह्मण जीवन हो जाए। बहुत दुख देते हैं ये भूत, पागल कर देते हैं, विक्षिप्त कर देते हैं। सुबह कहा ये रात है, विकारों की चेष्टा है यहां, जब दिन हो जाएगा तो भूत स्वतः ही चले जाएंगे। तो ये 2020 हमारे लिए दिन हो जाए जिसमें एक भी विकार न रहे, उसका अंश भी ना रहे, ऐसी निर्विकार अवस्था हो जाए, ऐसी ब्रह्मचर्य की शक्तिशाली अवस्था हो जाए, ऐसी प्यूरिटी की अवस्था हो जाए कि हमारे मनो मस्तिष्क में संकल्पों के तलों पर, कल्पना के तल पर भी, स्वप्न में भी जरा भी विकार स्पर्श ना करे। हमारा हर बोल हर शब्द पवित्रता से ओतप्रोत हो, हर संकल्प विश्व की सेवा करे, अभी अभी मुरली चली थी, फॉलो फादर करने को कहा और फॉलो फादर करने की विधि बताई, जो ब्रह्मा के बोल वो तुम्हारे बोल, जो उसके कर्म वो तुम्हारे कर्म, जो उसके संकल्प वो तुम्हारे, जैसे उसके संबंध संपर्क थे वैसे तुम्हारे। सुबह की साकार मुरली, ब्रह्मा का जीवन क्या है? कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर। क्या, क्यों, कैसे, प्रश्न उठे तो इस कंप्यूटर में जाओ, कैसे, वैसे, ऐसे हो जाएगा। तो इस 2020 में इस मंत्र की सहायता से कुछ परिवर्तन करना है। 19 और 20 में 19-20 का अंतर ना हो, बड़ा अंतर हो। अंतर शब्द के दो अर्थ है, एक फर्क, दूसरा अंतर मन। हमारा अंतर 19 में कैसा था और अब 20 में कैसा हो, तो इस बात के लिए आज की इस क्लास में हम ऐसी 20 बातों की चर्चा करेंगे। 19 में वो 20 बातें कैसी थी और 20 में ये 20 बातें कैसी हो, उन दोनों में क्या अंतर हो। वैसा ही जीवन ना चले जैसा चल रहा है। बहुत सारी अव्यक्त वाणियां हैं जिसमें बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा दी है। सबसे पहली वाणी इस यज्ञ की, 21 जनवरी 1969, ज्ञान तुमने बहुत सुना, ज्ञान तुम जानते हो, वो ज्ञान समय पर याद आ जाना, ये है तीव्र पुरुषार्थ, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा तीव्र पुरुषार्थ, जगदीश भाई जी ने कभी कही थी, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात परिवर्तन। बाबा के महावाक्य तीव्र पुरुषार्थ अर्थात जो स्थिति एक सेकंड पहले है वो एक सेकंड के बाद न रहे, उससे आगे हो, ये है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ की अगली परिभाषा, जो गलती एक बार हो गई है वो दोबारा न हो, इसे कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। जो गलतियां, जो पाप, जो विकर्म 2019 में हुए, जो सूक्ष्म श्रीमत का उल्लंघन हुआ, जो ब्रह्मचर्य खंडन हुआ, वो इस नए वर्ष में ना हो, ये है तीव्र पुरुषार्थ। और जब तक आत्मा को शॉक न लग जाए, धक्का ना लग जाए, वो सोई पड़ी रहती है, रूहानी बेहोशी। किसी एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, तुम्हारी एक एक कर्मेंद्रिया मकड़ी का जाल बुनती है और उसमें आत्मा रूहानी बेहोशी में सो जाती है। बाप आए हैं तुम्हें जगाने इस रूहानी बेहोशी से। तो ऐसी वो कौन सी बातें हैं जिसमें हमें परिवर्तन लाना है? ये सारी बातें दिनचर्या की बातें हैं, सभी जानते हैं, परंतु जानना पर्याप्त नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात लाइट, ज्ञान अर्थात परिवर्तन। ऐसा धक्का अंदर से लग जाए कि ये मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए आया था यहां पर, अपने ही मन से, अपने आप से बातें करनी नहीं। अरे मूर्ख मन, तेरा लक्ष्य क्या है और तू कर क्या रहा है? 5 प्रकार के खजाने बताए बाबा ने अभी अभी मुरली में, इनको सफल करो। सबसे पहले समय का खजाना सफल करो तो वहां पर लंबा समय राज्य होगा। श्वासों का खजाना समय सफल करो तो स्वस्थ रहेंगे। शक्तियां अपने अंदर अर्जित करो तो वहां शक्तियों की कमी नहीं होगी। ज्ञान इतना भर लो, वहां पर किसी वजीर, किसी अमात्य, किसी मिनिस्टर, किसी मंत्री की आवश्यकता नहीं होगी। निर्विघ्न अटल अखंड राज्य होगा। गुणों को अपने अंदर इतना भर दो कि अंतिम जन्म में भी सर्वगुण संपन्न के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। ये 5 खजाने सफल करने हैं। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। अभी अभी मुरली चली है, एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ ना जाए। श्वास सफल करना है उसकी याद में। तो ऐसी हम 20 बातें लेंगे, जो अब तक कर रहे थे वो अब बदल जाए। सबसे पहली बात, अमृत वेला। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अमृत वेला। सुबह सुबह गाड़ी को पटरी पर डाल दो, गाड़ी अपने आप चलती रहेगी दिन भर। फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि ये करना कि वो करना, इससे क्या करूं उससे क्या करूं। अमृत वेला स्वयं को परमात्मा प्रेम से ऐसा भर दो कि सारे दिन भर फिर आत्मा किसी के भी प्यार में आकर्षित नहीं होगी, कोई देहधारी उसे नहीं खींचेगा, इतना प्रभु प्रेम से उसको भर दो। अब तक जो अमृत वेला किया वो कैसा था, साधारण था तो उसे शक्तिशाली बनाना, उसमें व्यर्थ था तो उसको व्यर्थ से मुक्त करना, उसमें अलबेलापन था उसमें अलबेलापन को निकालना, वो अगर अनियमित था तो सबसे पहला काम तो उसे नियमित करना। और कई बार जैसे हम कहते हैं शक्तिशाली अमृत वेला करने की विधि क्या है, जल्दी उठना नहीं, जल्दी सोना, ताकि अपने आप आत्मा उठ जाए। और उठते ही दो बार स्वयं को जगाना है, एक तो स्थूल निद्रा से और दूसरा स्वमान से स्वयं को जगाना है। उठते ही संकल्प, मैं कौन और किसने मुझे जगाया है। बाइबल में एक जगह लिखा है, वो डेविड लिखता है कि मैं उठता हूं प्रभु और पाता हूं तुम मेरे ही खटिया में बैठे हो। आई वेक अप एंड सी यू ओ लॉर्ड इन माई कोच। उठो और देखो कि भगवान स्वयं मेरे सम्मुख खड़ा है। और अमृत वेला की अवधि को भी बढ़ाना है, गुणवत्ता को भी बढ़ाना है, क्वालिटी क्वांटिटी बोथ, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं। तीन प्रकार की पुकार इसी मुरली में बाबा ने सुनाई, दुखियों की पुकार, समय की पुकार, भक्तों की पुकार। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देती, इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं हमको करनी है। ये सेवाएं वाणी से नहीं होगी, स्थूल कर्म से नहीं होगी, मन से होगी। एक ही स्थान पर मन इतना शक्तिशाली बन जाए कि उसके प्रकंपन सारे विश्व की परिक्रमा करे। और एक संकल्प आप सबको दे रहे हैं, दो संकल्प, इसके पहले भी कई बार बताए हैं, मैं आत्मा इस सृष्टि का केंद्र हूं, मुझे इस संसार की एक एक आत्मा को पावन करना है, मुझे इस संसार के एक एक कण को पावन करना है। ये बहुत शक्तिशाली संकल्प है। बार बार ताली बजाने की भी आवश्यकता नहीं, धारण करना है, मैं आत्मा इस सृष्टि का केंद्र हूं और मुझसे और मुझे इस संसार की एक एक आत्मा को पावन करना है, एक एक कण को मुझे शक्तिशाली और पवित्र बनाना, इतना बड़ा कार्य मेरे पास है, मैं सो कैसे सकता हूं, जागना है, बहुत सो लिए। तो अब तक का अमृत वेला अगर अनियमित है तो उसे नियमित करना है और उसका समय भी बढ़ाना है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। 5 मिनट भी पीछे जाने के लिए लंबी तपस्या लगती है, केवल 5 मिनट भी पीछे, क्योंकि एक दो दिन का खेल नहीं है, लंबे समय का पुरुषार्थ है। तो अमृत वेला ऐसा बैठो संपूर्ण जागरण अवस्था में, जरा सी नींद, जरा सा भी नींद का नशा उसमें ना हो, ऐसी शक्तिशाली स्थिति, ऐसी एकाग्रता की स्थिति। अब तक जो किया वो कर लिया, फुल स्टॉप, बिंदी, पूर्ण विराम, अब वैसा नहीं होने देंगे। अपने आप से ही बात करनी है, अपने आप को ही समझाना है, क्योंकि जो प्राप्तियां, जो शक्ति आत्मा में सुबह भरती है, दिन में नहीं भर पाती। जो टचिंग सुबह सुबह होती है वो दिन में फिर नहीं होती। इसलिए सुबह सुबह स्वयं को बाबा के सामने संपूर्ण समर्पित कर देना, जो हूं जैसा हूं आपका हूं। और यहां पर फिर उस मंत्र का प्रयोग करना है, अगर नहीं हो रहा है, बाबा मेरे, बाबा मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। यज्ञ में एक किताब है अमृत वेला, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो कल ही ले लेंगे और पूरा एक मास उस किताब को पढ़ना है। तब तक पढ़ना है जब तक उसकी एक एक लाइन हमें याद ना हो जाए, क्योंकि वो डायरेक्ट बाबा के महावाक्य है उस किताब में। एक एक बात जो बाबा ने कही है इस संसार में और किसी ने भी नहीं कही है ऐसी बातें, इसके लिए सबसे पहला काम तो ये करना है, दिन की शुरुआत शक्तिशाली तो सारा दिन शक्तिशाली, दिन की शुरुआत में ही गड़बड़ है तो सारा दिन गड़बड़ होगी, दुख होगा, उदासी आएगी, शरीर दिखाई देगा। सुबह मुरली में कहा था बाबा ने, तुम्हें तुम्हारी नजर शरीर पर जाए ही नहीं, इस शरीर से हमारा कोई मतलब नहीं, ऐसी विदेही ऐसी अशरीरी अवस्था सारी सारे दिन भर रहे, जैसे ऐसा हल्कापन कि जैसे मैं आत्मा इस शरीर में हूं या ना हूं। पिछले 6 मास बाबा के जीवन के जो थे, अंतिम 6 मास उसमें बाबा के महावाक्य आते थे, बाप इस तन में ऐसे रहते हैं जैसे इस तन में है ही नहीं। बच्चों को लगा ये शिव बाबा कह रहा है, परंतु वो शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा के अनुभव बोल रहे थे। बाप इस तन में ऐसे रहते हैं जैसे यहां है ही नहीं। कर्मातीत अर्थात मुर्दा, कुछ दिन पहले मुरली थी, कर्मातीत अर्थात डेड साइलेंस, वो मौन आत्मा को खींचे, वो आंतरिक एकांतों से खींचे, आत्मा उस अतिंद्रिय सुख में डूब जाए। तो जो अमृत वेला ठीक ठाक नहीं हुआ, सबसे पहले उसको ठीक करना है। दूसरी पॉइंट, प्लानिंग। अमृत वेले के बाद अगले 15 मिनट या 10 मिनट बैठकर सारे दिन की प्लानिंग करनी है कि मुझे आज क्या क्या करना है, कहां कहां जाना है, किसको किसको मिलना है, किस तरह का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि का टाइम टेबल और स्थूल टाइम टेबल दोनों बना के रखना है। छोटे छोटे कर्म में समान को कहां कहां जोड़ना है। अगर ये प्लानिंग नहीं हो रहा तो फिर से उसी मंत्र को याद करो, बाबा आ जाओ मदद करो। बिना प्लानिंग के केवल प्रतिज्ञा करके कभी कुछ नहीं होता है। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करते हैं सभी मधुबन में आके, पर फिर बाद में कहते वहां गए और कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि प्रतिज्ञा तो की परंतु उसकी प्लानिंग कुछ नहीं की, योजना कुछ भी नहीं बनाई। और बिना योजना के कोई भी कर्म, कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी प्रण सफल नहीं होता। यहां बैठे बैठे वहां जाके क्या करना है, इसकी प्लानिंग बनाना है। जो कल जाने वाले हैं, आज रात को जाने वाले हैं, अभी भी थोड़ा समय है, मधुबन में बैठकर प्लानिंग बनानी है। अगले 6 मास के पुरुषार्थ की प्लानिंग यहां से बना के जाना है, इस पवित्र प्रांगण में बना के जानी है। वहां सेवा केंद्र में क्या करना है, ऑफिस में क्या करना है, घर में क्या करना है, किस तरह का मेरा पुरुषार्थ हो, क्योंकि मेरी कमी मेरे अतिरिक्त और कोई भी नहीं जानता, इतनी सूक्ष्म है वो। तो अपनी सूक्ष्म कमियों को देखना है। और दूसरी पॉइंट जो बताई, अपने सारे दिनचर्या की प्लानिंग करनी है और उसमें प्रायोरिटाइजेशन, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है आज, उसको सबसे ऊपर, दूसरा महत्वपूर्ण काम, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये प्लानिंग हो स्थूल कर्म की भी और बुद्धि की भी। दूसरा काम। तीसरा, सारी दिनचर्या में एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जो ब्राह्मण आत्माएं, तापने कहा है, बार बार बीमार पड़ते हैं, बाप दादा उन्हें ज्ञानी योगी आत्मा नहीं कहते, अपनी ही गलतियों से जो बीमार पड़ते, जिसने शरीर को चलाना नहीं सीखा वो राज्य को क्या चलाएगा। माइंड बॉडी मैनेजमेंट इज किंगडम मैनेजमेंट। अपने ही शरीर को समझना है, स्वस्थ रखना है, और ये आदत जिनों में नहीं है वो डालनी है। अगर ये नहीं हो रही है और हमारा अमृत वेले का समय नींद में जा रहा है, ये बहुत बड़ी भूल हमसे हो रही है। अमृत वेला, अभी अभी आत्मा संपूर्ण जागरण हुआ है, बैटरी पूरी चार्ज हुई है, और उसके बाद में जाके सो रहे हैं कि कमाई चट। कई कहते हैं हमें दिनचर्या में फिर समय नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, 1000 कारण बताते हैं, चाहे कुछ भी हो, पर अमृत वेले के बाद का समय श्रेष्ठ चिंतन का समय है, मनन का समय है, एक्सरसाइज वॉकिंग का समय है, प्रकृति के सानिध्य का समय है। मन खुल जाता है प्रकृति के सानिध्य में जाकर, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ विचार उसमें प्रवेश करते हैं, टचिंग्स होती है, नई नई ये करूं, वो करूं, क्या करूं, कैसे पुरुषार्थ करूं, कैसे स्वयं को आगे बढ़ाऊं, तो ये तीसरा काम, जिनको ये आदत है, अमृत वेला हो गया और सो गए, सबसे पहले इस नए वर्ष में इस आदत को बदलनी है। निकल जाओ बाहर वॉकिंग के लिए, और जो लोग नहीं जा सकते वो वहीं पर, छत होगी। मम्मा किसी भी नए स्थान पर जाती थी तो सबसे पहला ये प्रश्न होता था, मम्मा का यहां पर छत कहां है। निसर्ग प्रेमी बनना है, अपने शरीर का भी ध्यान रखना है ताकि वो बीमार ही ना पड़े, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। आज के मुरली के वरदान में एक ऐसी विधि बताई है, शायद मेडिकल की किसी भी किताब में स्वस्थ रहने की ऐसी विधि नहीं है। क्या था स्लोगन? वरदान नहीं, स्लोगन, स्वस्थ रहने की विधि, आत्मिक शक्ति का अनुभव, आत्मिक शक्ति के आधार से स्वस्थ रहने का अनुभव करो। कितनी नई बात है, मुरली को आश्चर्य की भांति देखना है, ओहो ये क्या नई बात बोल दी, हमने तो कभी सुनी नहीं, इस आश्चर्य से, इस विस्मय के भाव से उसे देखना है तो नवीनता आएगी। तो अमृत वेला, दूसरा प्लानिंग, तीसरा वॉकिंग एक्सरसाइज या चिंतन, चौथी बात मुरली। मुरली में पांच शब्द है, MURLI, मुरली के साथ रोज पांच बातें करनी है। एम अर्थात मनन, परसों की मुरली थी, एक एक बात पर मनन करो। जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते, जरूर उनके अंदर कीचड़ पट्टी का विचार सागर मंथन हो रहा है, उससे कीचड़ा ही निकलेगा। और बिना विचार सागर मंथन किए परसों की मुरली धारणा हो नहीं सकती। कितना भी सुन लिया है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, बाप आए हैं पवित्रता की स्थापना करने, परंतु वो पवित्रता और हम बहुत दूर है, क्योंकि चिंतन नहीं हो रहा है, केवल प्रतिज्ञाएं है बस। श्रेष्ठ चिंतन, एक एक शब्द पर चिंतन करना है, एक एक बात पर चिंतन करना है, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि जो कहने वाला है वो ज्ञान का सागर है। केवल बाबा ज्ञान का सागर नहीं, उसकी महिमा में एक शब्द और जोड़ दो, वो प्रैक्टिकल ज्ञान का सागर है। उसका दिया ज्ञान किसी शास्त्र का ज्ञान नहीं है। संसार का तो ज्ञान बहुत है संसार में, कल की मुरली में तो सारी मिनिस्ट्री यहां पर है, पर वो ज्ञान संसार का जो है, जब हृदय पर आघात होता है तो गौन हो जाता है। ये ज्ञान तो ऐसा ज्ञान है कि हृदय को इतना शक्तिशाली बना देता है कि चाहे कितने भी आघात हो जाए संसार के, अचल अडोल अवस्था रह सकती है। इसलिए एम पहला मनन, यू अंडरस्टैंड, समझना है वो क्या कह रहा है। आज की साकार मुरली, जो बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके हो चुके, वो भी बाप को यथार्थ रीति से नहीं जानते। कितनों थे, कितने थे, कितनों को नाम दिए चले गए, इसलिए अब बाबा नाम देना बंद करते हैं। जो ये कहते हैं बाबा हम आपके हो चुके, उन्होंने भी बाप को यथार्थ नहीं जाना है। मुरली को समझना है वो कह क्या रहा है और कौन कह रहा है और क्या इसका गुणार्थ है, मतितार्थ है, शब्दार्थ है, वाक्यार्थ है, क्या है ये। तीसरा आर, कईयों ने मुरली केवल सुनना रखा है, पढ़ना बंद कर दिया है, या समय नहीं है पढ़ने के लिए। जब तक खुद पढ़ते नहीं तब तक बुद्धि में बहुत सारी बातें जाती नहीं है। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना है हर दिन। एल लिसन, सुनना है। कईयों ने सेंटर पर जाकर मुरलियां बंद सुनना बंद कर दिया, घर में ही बैठ के सुनते हैं या खुद ही पढ़ लेते हैं बस। सेवा केंद्र पर जाना अर्थात उस वायुमंडल में प्रवेश करना जहां पर कोई विकर्म नहीं हो सकता। हर सेवा केंद्र बाबा का मधुबन का प्रतीक है, प्रतिबिंब है, शुद्ध संस्कृति का द्वीप है एक एक सेवा केंद्र। दीवारों पर पवित्रता है, एक एक ब्रह्मा कुमारी बहन पवित्रता और ब्रह्मचर्य का अवतार है। अनटच्ड प्यूरिटी, ऐसी महान देवियों और आत्माओं के सानिध्य में जाकर वहां बैठना मात्र ही भाग्य है। सुन और लास्ट आई अर्थात इम्बिबिशन, इम्बाइब करना अर्थात धारण करना। तो मुरली के साथ ये पांच काम करने हैं। अब तक बहुत मुरलियां सुन ली, वो केवल सुनना था, अब पढ़ना भी है, सुनना भी है, और एक महत्वपूर्ण काम जो हर एक को 2020 में चालू करना है। 1969 से लेकर 2017 तक टोटल 1100 अव्यक्तवाणियां हैं। ऐसे बहुत कम होंगे जिनकी ये सारी अव्यक्तवाणियां पढ़ के हो गई है। इतना कोर्स पेंडिंग है, इतनी सारी चीजें हमने की नहीं है, और हम शैन से कैसे बैठ सकते हैं? क्या हमारी सारी अव्यक्तवाणियां पढ़ के हो गई? नहीं हुई, और फिर हम कहते हैं बाबा ये क्या, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये कैसी परिस्थिति आ गई? बाबा कहेगा मैंने इसके विषय में कह के रखा है 1972, गो एंड रेफर, वहां कहा है, तुमने पढ़ा नहीं है, तुम्हारा दोष है। महाप्रोजेक्ट, ये काम करना है। निकालो वो सारी अव्यक्तवाणियां, मोबाइल में सब कुछ है आजकल तो, और रोज उन अव्यक्त वाणियों को पढ़ना है, धारण करना है, समझना है, गहराई में जाना है। बाबा ने कहा ऊपर ऊपर रहोगे तो केवल मछलियां हाथ में आएगी, सागर की अतल गहराई में घुसना है तो कहीं जाकर रत्न मिलेंगे। अभी अभी मुरली चली, बच्चों के तीन प्रश्न जो अव्यक्त वाणी यहां चली। पहला, बाबा हो गया, हो गया अर्थात तुम्हारे पास इंद्रियों को कंट्रोल करने की कंट्रोल पावर नहीं है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। दूसरा, बाबा अपोजिशन है, बाबा ने उदाहरण दिया ब्रह्मा का, उसको कितना अपोजिशन था, क्या तुमसे कम था? पोजिशन में रहो तो अपोजिशन समाप्त। तीसरा, क्या करे, कैसे करे? बाबा ने कहा यह अंधकार है, प्रकाश को लाओ, रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार समाप्त होगा। बच्चों के तीन प्रश्न और बाबा के तीन उत्तर, अभी अभी जो वाणी चली यहां पर 31 दिसंबर 2008 की। क्या, क्यों, कैसे अर्थात अंधकार, प्रकाश को लाओ, ज्ञानंजन शलकया, ये तिमिरांधस्य, अज्ञान का तिमिर है ये। तो मुरली, अमृत वेला, बैठ के उसके बाद प्लानिंग की, एक्सरसाइज वॉकिंग, चौथा मुरली, पांचवा भोजन, भोजन, तीन शब्द है उसमें। भो अर्थात जो भोजन हम खाए वो भोग लगाया हुआ हो हमारे द्वारा, ज अर्थात जाति दोष उसमें ना हो, जाति दोष अर्थात कंकड़ पत्थर, जाति दोष अर्थात जिस ढंग से वो कमाया हुआ है, क्या वो बाप की याद में कमाया हुआ धन है? जो भोजन हम खा रहे हो उन पैसे का हो जो परमात्मा याद में कमाया हुआ है, जाति दोष अर्थात वो राजसिक और तामसिक ना हो, वो ऐसा हो कि जिसमें शरीर में हल्कापन हो। जो न, न अर्थात ना, कौन कौन सी चीजें उसमें ना हो, ओवर ईटिंग ना हो, वो भोजन जो आलस और प्रमाद लाए वो ना हो। तीसरा, वो भोजन जो उत्तेजना उत्पन्न करे, अति तीखा, मिर्च मसाले वाला, जिससे उत्तेजना हो शरीर में, ऐसा हो कि जैसे खाने के पहले और खाने के बाद स्थिति सेम, शरीर जैसे है या ना है ऐसा अनुभव, क्रोध में स्वीकार किया हुआ ना हो, कंप्लेन के साथ खाया हुआ ना हो। आज कहा बाबा ने क्रोध वाला कोई आ जाए तो उसके सामने भी मत रहो, दूर हो जाओ, किनारा कर लो। भूत नाथिनी शब्द कितना छी छी है। सुबह की मुरली, रफ टफ बोलते हैं, क्रोध करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण नियम भोजन का संपूर्ण मौन में स्वीकार किया जाए। कुंज दादी हमेशा अनुभव सुनाती है, बाबा भोजन कर रहे, कुंज दादी आती है बाबा से, कहती बाबा मैंने ये सेवा की वो सेवा की, बाबा सुनते कहते बच्ची तुमने बाप को साजन से अलग कर दिया। दादी कहती है बाबा सॉरी, भोजन का समय तपस्या का समय हो। भोजन तप कुंड है, एक एक निवाला विश्व की आत्माओं को शक्ति भरे, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन स्वीकार करना, और जितना हो सके जो कुमार और भाई है अपने ही हाथ का बनाया हुआ सबसे अधिक शक्तिशाली भोजन है, और जिनको बना बनाया मिल रहा है वो उसे शक्तिशाली दृष्टि देकर अर्पित कर बिना किसी कंप्लेंट के मौन में खुशी से प्रसन्नता से खाए और कम, क्योंकि भूख का संबंध पेट से नहीं मस्तिष्क से है। ये पांच बातें। उसके बाद आगे बढ़ते, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर से बाबा आ जाओ मदद करो मंत्र का प्रयोग करना है। यहां पर अगला ट्रैफिक कंट्रोल, मुख्य ट्रैफिक कंट्रोल 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 बजे, 7:30 बजे, 9:30 बजे, ये पांच है ऑफिशियल, इनको कुछ करना है इनके साथ। वो 3 मिनट के अभ्यास करें, इसका प्रोग्राम बनाना है। पहले मिनट क्या करें? आत्मिक स्वरूप। दूसरे मिनट बाबा की याद। तीसरा विश्व को सकाश। 3 मिनट्स को 3 भाग में डिवाइड करना है। पहले में आत्मिक स्वरूप में स्थित, दूसरे में बाबा से कंबाइंड, तीसरे में सकाश। अगली बात है कर्म योग, कर्म करते हुए हथकारडे दिल यारडे। किस लिए मैं कर रहा हूं? किसकी ये सेवा है? बाबा की ये सेवा है, उसके लिए कर रहा हूं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, काहे का अहंकार, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं। नल है, हम टंकी ऊपर है, पानी ऊपर से आ रहा है, नल को कैसा अभिमान, कैसा अहंकार। वो चाहता तो हमारी जगह किसी और अन्य योग्य व्यक्ति को रख सकता था, हम तो शायद योग्य भी नहीं थे, उन्हें उसने योग्य समझा, ये उसकी दया कृपा अनुकंपा है। अगला ड्रिल, 20 बातों में अगली बात ड्रिल, सारे दिन भर छोटी छोटी ड्रिल करना है। ट्रैफिक कंट्रोल अलग जो मुख्य 5 बताए, पर ड्रिल अर्थात 1 सेकंड में अशरीरी हो जाना, 1 सेकंड में जैसे सन्नाटा। हमने स्वयं देखा है कि जब सारे दिन भर ड्रिल की जाती है अति व्यस्तता में, तब स्थिति बहुत शक्तिशाली रहती है, अंदर से कोई हिला नहीं सकता। ऐसी ऐसी बातें दिनचर्या में हर एक की आती होगी, 100-100 बातें आती है, नए लोग आते हैं, नई कुछ कुछ होते रहता है, पर अंदर से ड्रिल होती रहे तो स्थिति बहुत बहुत पावरफुल रहेगी, बहुत शक्तिशाली रहेगी। तो छोटी छोटी ड्रिल, 1-1 सेकंड की ड्रिल, मैं आत्मा परमधाम में गई, टच की और आ गया, मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में गई, मैं आत्मा सतयुग में, मैं आत्मा मंदिर में देवी देवता, मैं आत्मा संगम योगी ब्राह्मण, मैं आत्मा फरिश्ता, 1 सेकंड की ड्रिल और वापस। तो कर्मयोग, ट्रैफिक कंट्रोल, ड्रिल, इन तीनों को शक्तिशाली बनाना है इस नए वर्ष में। नहीं हो रहा है तो बाबा आ जाओ मदद करो, तुम ही ने तो ड्रिल सिखाई, अब तुम ही बताओ क्या करूं, कैसे करूं। वो खुद सिखाएगा सम्मुख बैठकर। अगली बात सेवा, सेवा का खिलौना बाबा ने हमको दिया है, सेवा डिस्टर्बेंस का कारण न बन जाए। सेवा करनी भी है तो निमित्त भाव से और बहुत खुशी से, और इस भाव से कि किसकी सेवा है, किसने मुझे दी है, और सेवा का ही भाव हो, बहुत खुशी रहेगी अंदर। इतने बड़े विशाल यज्ञ की मैं सेवा कर रहा हूं, कितना ना बड़ा भाग्य है मेरा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने मुझे दी है, अंदर ही अंदर खुश रहना है। अगला संबंध, रिलेशनशिप, 2019 में जैसे संबंध थे अब उन सबको ठीक करना है। अभी अभी मुरली चली, बाबा ने कहा दिल से कहो बाबा तो तुम्हारे पास परिवर्तन शक्ति आएगी, ये परिवर्तन शक्ति निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी। यहीं से संकल्प करके जाना है कि हमारे जितने संबंध है उधर लौकिक अलौकिक में जीवन में, जिसमें जितनी कड़वाहट आ गई है, निगेटिविटी आ गई है, दूरी आ गई है, वो सब मुझे ठीक करनी है। और उसके लिए विधि है झुकना, झुक जाओ, क्योंकि संबंधों में जो दूरी और कड़वाहट है उनका एक कारण है मेरा अपना अहंकार, ये स्वीकार कर लेना कि तुम राइट हो। 2010 की अव्यक्तवाणी, डबल फॉरेनर से मुलाकात, माया के दो रूप, पहला मैं राइट हूं, दूसरा व्यर्थ संकल्प। बाबा ने कहा ये माया है, जब तुम ये कहते हो मैं राइट हूं, झुक जाओ, संबंध मधुर हो जाए, कड़वाहट जिसमें है, और हर व्यक्ति अंदर कड़वाहट भर के है, अपने सीनियर्स के लिए, साथियों के लिए या जूनियर्स के लिए, इसको हटाना है। तब तक जब तक मैं नहीं बदलता, वो नहीं बदलेंगे। इसी मुरली में जो यहां चली, बाबा ने कहा पहला है स्व परिवर्तन, दूसरा है मित्र संबंधियों का परिवर्तन, और तीसरा है विश्व का परिवर्तन। विधि है तीन, शुभ भावना, शुभ कामना, दृढ़ संकल्प। अभी अभी जो मुरली चली यहां पर, दूसरों के साथ कुछ करना ही नहीं है, मुझे जो कुछ करना है अपने साथ करना है। वो जो है जैसे है उनका अपना पार्ट है, मुझे झुक जाना है और संबंधों को सुमधुर बनाना है। नहीं बन रहे हैं तो बाबा आ जाओ, मदद करो। क्या ऐसी गलती हो रही है इस संबंध में, दो व्यक्तियों के संबंध में क्यों इतनी कड़वाहट, क्यों हर डिस्कशन और दूरी बढ़ा रहा है, किस चीज की आवश्यकता है? प्रोबेबली अब डिस्टेंस की आवश्यकता है, साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं उसे मनोविज्ञान में। थोड़े देर के लिए मौन हो जाओ, दूर हो जाओ, इमोशनल डिटैचमेंट। साथ में रहते हुए भी दो व्यक्तियों में इमोशनल डिटैचमेंट हो, हर एक को स्पेस चाहिए, उसको दे दो, शायद ये मौन, ये डिटैचमेंट ही संबंध को ठीक कर देगा। बहुत बातें कर ली, बहुत चर्चाएं कर ली, बहुत मिल लिया, सुलह करने की कोशिश की, फिर और बिगड़ता ही गया। 2020 में सारे संबंधों को ठीक करना है, ये संकल्प लेके जाना है मधुबन से, तो रिलेशनशिप। उसके बाद में परिस्थितियां, क्या परिस्थितियां आएगी हमें पता नहीं, पर अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत बना के रखना है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां आए, कुछ दिन पहले मुरली थी, अक्षयोनी सेना तुम्हारे विरुद्ध हो, बाप तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं होगा तुमको। मनुष्य के जीवन में दो समय है, एक परिस्थितियों का समय, एक गैर परिस्थितियों का समय, जब सब कुछ शांत सामान्य है, उसी समय स्वयं को शक्तिशाली बनाना होता है। परिस्थितियों के समय शक्तिशाली बनाने की साधना नहीं होती है, शुरू जब कोई परिस्थितियां नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो समय अलबेलेपन में ना गुजरे, वो समय श्रेष्ठ तपस्या में गुजरे, उसी मौन में और उसी एकांत में आत्मा शक्तिशाली बनती है, उसी अमृत वेले की, इंग्लिश में कहते हैं सिबिलेंस ऑफ द नाइट, जो रात में सन्नाटा की आवाज होती है, इन द सिबिलेंस ऑफ द लाइट लॉर्ड विल फिल यू विद पावर। वो जो सिबिलेंस है, उस सन्नाटे में बैठकर, जहां सारा संसार सोया है, यहां तक कि ब्राह्मण परिवार भी सोया है, उस सन्नाटे में उठकर आत्मा में बल भरना है, शक्ति भरनी है, शरीर से अलग हो जाना है, तो पावर आएगी उसमें, तलवार में जोहर भरेगा। परिस्थितियां, उसके बाद महत्वपूर्ण निर्णय, अगली पॉइंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस। जीवन में जब बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, तब बाबा का आह्वान करना है। बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन, रहना है कि नहीं रहना, ये स्थान वो स्थान, जॉब करूं कि छोड़ू, सेंटर या घर, मधुबन या सेंटर, या और कोई डिसीजन। कम से कम तीन अमृत वेला गुजरने चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले, हर अमृत वेला सुबह 2 से 5 तक का, जिसमें बाबा के सामने संपूर्ण समर्पण कर दो। अब बाबा तुम बताओ क्या करूं, ये डिसीजन लेना है, जीवन का डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण। बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, मदद करो। दिखाया है, उस दिन भी बताया था, हिरनी है गर्भवती, बीच में जा रही है, सामने देखती है नदी उफान पर है, पीछे देखती है जंगल में आग लगी है, दूसरी तरफ देखती है शेर आ रहा है, और एक तरफ शिकारी, क्या करूं, कहां जाऊं, गर्भवती है बिचारी हिरनी, आर्त पुकार निकलती है हृदय से, हे प्रभु तुम कहां हो, मदद करो, और स्वयं को शून्य में ले जाती है, कोई संकल्प नहीं, जीरो, संपूर्ण समर्पण। अचानक बिजली कड़कती है, शिकारी की आंखें चौंधी आ जाती है, तीर मारता है, तीर शेर को जाके लगता है, शिकारी डर जाता है, भाग जाता है, घायल शेर। बारिश होती है, आग बुझ जाती है, गिरनी अपने घर, समर्पण, इंपॉर्टेंट डिसीजन। अगला ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग यात्रा का समय, डिस्टरबेंस का समय होता है, क्योंकि इसमें हमारी दिनचर्या थोड़ी हिल जाती है, उस समय कैसे अचल अडोल रहे, ट्रेन, फ्लाइट, टैक्सी, गाड़ी, कार, उस समय अभ्यास करने, ये बहुत अच्छा समय है। और एक बात हम अपने ही बारे में बताते, इस हॉल में जितनी भी क्लासेस कराई है उसकी तैयारी वहां से जब निकले और नीचे पहुंचते पहुंचते ही की है, क्योंकि वहां व्यस्त है दिन भर। ये ट्रैवलिंग का जो समय है इसको योग युक्त बना देना है। उसके बाद में अगली पॉइंट, नुमा शाम का योग। जैसे अमृत वेले का महत्व है, वैसे ही नुमा शाम के योग का भी महत्व हो। अब तक बहुत सारा नुमा शाम का योग हमने मिस कर लिया है, अब इसको ठीक करना है। एक सेवा केंद्र पर हम गए थे, वहां के भाइयों ने कहा यह सेवा केंद्र 30 साल से निर्विघ्न चल रहा है। क्यों? हमने कहा ऐसा क्या है, कोई विघ्न टच नहीं करता इस सेंटर को। वो भाई ने कहा यहां पे बहने और जितने स्टूडेंट है सभी रेगुलर, नियमित, जैसा अमृत वेला शक्तिशाली हरेक अपना अपना करता है, अमृत नुमा शाम का योग कंबाइंड होता है सबका और सब लोग करते हैं। अगर एक भी नहीं हो तो प्रश्न पूछे जाते क्यों नहीं आए। हमने देखा वहां का वायुमंडल बहुत पावरफुल था, बाबा का कमरा तो जैसे अग्निकुंड था, ऐसी तप की ज्वाला और प्यूरिटी की ज्वाला वहां से निकल रही थी। नुमा शाम का योग, इसको रेगुलर करना है। जो ड्यूटी पे है उस समय, ट्रैवलिंग में है, वो कम से कम 7 से 7.5 अपने आप को जहां कहीं भी है एकाग्र कर देना, बाबा से कंबाइन कर देना। काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी बाबा से जोड़ देना। और जिनको कोई काम नहीं है सब कुछ हटाकर 6 बजे से तैयारी चालू कर देनी है शाम के योग की। एकाग्र होके बैठ जाओ तपस्या में। 2020 तपस्या का वर्ष हो। नुमा शाम का योग। और हमने देखा है कई भाई बहने तो ऐसा कहते हैं हमारा शाम का योग ज्यादा शक्तिशाली होता है, सुबह से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। और कईयों का ऐसा अनुभव है कि दिनचर्या में जो कुछ चला है वही घूमते रहता है बुद्धि में। वो इसलिए क्योंकि कर्म करते समय डिटैच नहीं थे, कर्म कॉन्शियस थे, कर्म ही बुद्धि में घूमते रहते हैं। कितना फास्ट हम अपने कर्मों से डिटैच होते हैं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, मनमोहिनी दीदी से मुलाकात, जो कहीं पर भी पब्लिश नहीं हुए थे। दीदी ने पूछा था बाबा कर्मातीत की क्या परिभाषा है, बाबा ने कहा था कर्मातीत अर्थात कर्म टच ना करे, ना कर्म का परिणाम तुम्हें टच करे, यह है कर्मातीत। कर्म मुझे स्पर्श ना करे, कर्म कर रहा हूं ऐसा नहीं कि लापरवाह हूं, पूर्ण मनोयोग से कर रहा हूं, पूरी तन्मयता से कर रहा हूं, पर जैसे ही कर्म होता है डिटैच्ड, कुछ पता नहीं, सौंप दिया, होई सोई जो राम रचि राखा, डिटैच्ड। नुमा शाम का योग। अगला डिजिटल दुनिया, इसमें बहुत बड़ा भारी परिवर्तन लाना है। डिजिटल दुनिया, डिजिटल वर्ल्ड, ये जो मोबाइल है, युक्ति बनानी है ये स्पिरिचुअल मोबाइल कैसे बन जाए। ये सब कुछ चिंतन का टॉपिक दे रहे हैं, इस मोबाइल को स्पिरिचुअल मोबाइल कैसे बनाए। कम से कम 10 विधियां लिखनी है सबको। जब इसको चार्जिंग पर लगाए तो सोचना बाबा मुझे चार्जिंग कर रहा है, जब कोई कॉल आए तो सोचना कि बाबा की तरफ से कॉल आ रहा है, बाबा पूछ रहा है सब ठीक तो है। किसी का कॉल आए तो उस आत्मा को बात करने से पहले ही सकाश दे देनी है। जो हम सर्च कर रहे हैं, सोचना सारा ब्राह्मण परिवार बैठकर इसी डायमंड हॉल में वहां पर दिख रहा है सबको, वो मेरे मोबाइल की स्क्रीन है, सारा ब्राह्मण परिवार दिख रहा है। लंबी लंबी बातें करना, गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स सबसे बड़ी माया है। क्यों किसी से लंबी बात करनी है? बाबा ने कहा है सबसे संबंध तोड़ दो, तुम्हें किसी से भी मोह नहीं होना चाहिए। इससे मोह, उससे बात, इससे दोस्ती, उससे दोस्ती, इससे लंबी लंबी बातें, उससे, उस बहन से, ये भाई से, कौन क्या करेगा? मनुष्यों से जितना शेयर करेंगे, भगवान से शेयरिंग करना अपने आप कम होते जाएगा। एक घंटा बैठ कर किसको अपनी समस्या सुना दी, अब बाबा के कमरे में जाके क्या करेंगे? इधर तो सुना दिया सब कुछ, और वो व्यक्ति करेगा क्या? क्या कर सकता है कोई? अव्यक्त महावाक्य है, बाबा के हजार भुजाओं वाला बाप तुम्हारे सामने बैठा है, फिर भी दो भुजाओं वाले के पास जाते हो? कारण बताओ, क्यों? परमात्मा सभी प्रश्नों के उत्तर का सागर है, बाबा समाधान का सागर है। उत्तरों का वो उत्तर है। ब्रह्मा आज कहा उसका जीवन कंप्यूटर है, शिव बाबा तो सुप्रीम गूगल है, अनगूगलेबल ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसमें मिल जाएगा, सागर है। जो उससे उतना दूर है वो समस्याओं में है, प्रश्नों में है, जो उसके उतना समीप है उसे कोई प्रश्न नहीं है। इसको पकड़ू, उसको पकड़ू, इसको फोन, उसको फोन, ये भाई बता दे कुछ, वो भाई बता दे कुछ, क्या करूं? अगर शिव बाबा से शादी की है तो परपुरुष से क्या लेना देना? अपनी मैरिड लाइफ में किसी और को क्यों लाना है? ये स्पिरिचुअल मोबाइल बन जाए, हर मैसेज स्पिरिचुअल हो, हर कॉल स्पिरिचुअल हो, हर इंटरनेट सर्चिंग स्पिरिचुअल हो, सब कुछ ज्ञान योग के लिए हो। जिनको आवश्यकता है, जिनको आवश्यकता नहीं, वो तो इससे ही मुक्त हो जाए, कुछ नहीं होगा, जीवन सुखी हो जाएगा। अगली पॉइंट, ज्ञान डिस्कशन। ज्ञान सुनते बहुत है, भाषण भी करते हैं, भाषण सुनते भी है, मुरलियां चलाते हैं, मुरलियां सुनते हैं, क्लासेस कराते हैं, सेमिनार कराते हैं, वर्कशॉप कराते हैं, ये सब एक तरफ। इसके अतिरिक्त दूसरा एक काम करना है हर एक ब्राह्मणों को, वो है ज्ञान की चर्चा। दो लोग चाहिए बस चर्चा के लिए। एक किताब है वारे में ब्राह्मणात्मा, उसमें 10 कर्तव्य लिखे हैं ब्राह्मणों के, उसमें 10वां कर्तव्य है ज्ञान की चर्चा करना, ब्राह्मणों का कर्तव्य है। जिसमें कोई भाषण दे रहा नहीं है, चर्चा हो रही है, अच्छा चलो बोलो आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, अच्छा ये शब्द का अर्थ क्या है, बाप को उकीर रहता है ये उकीर क्या है, बाप तुम्हें चौप चीनी खिलाते ये चौप चीनी क्या है, बाप तुम्हें ज्ञान का वखर देते ये वखर का अर्थ क्या है। नए नए शब्द, नए नए बातें, चर्चा करनी है आपस में, ज्ञान की चर्चा होती रहे, ज्ञान की चर्चा से ज्ञान के संस्कार निर्माण होंगे। जैसे व्यर्थ की चर्चा से व्यर्थ के संस्कार अपने आप निर्माण हुए हैं, साकार महावाक्य है बाबा के, तुम्हारी बुद्धि में अब तक कीचड़पट्टी की बातें भरी थी, अब बाप की बातें भरो, ज्ञान चर्चा नहीं हो रही है तो फिर से आह्वान करो, बाबा आ जाओ, बाबा मुझे सिखाओ कैसे ज्ञान चर्चा करूं। अगर कोई भी नहीं है ज्ञान चर्चा करने के लिए, अपने आप से ही करो, आईने के सामने बैठकर, या बाबा को ही सुनाओ, बाबा तुमको याद है ना तुमने आज क्या कहा था, उसी को सुनाओ, उसी की मुरली उसी को सुनाओ, मजा आएगा। कल परसों की बात है, हम एक भाई से कह रहे थे हमारी नींद कम हुई है, तो वो भाई हमसे कह रहा था आप ही ने तो किसी एक क्लास में कहा था नींद अपना मार्ग खुद ढूंढ लेती है, चिंता नहीं करनी है नींद की कम हुई कम हुई। हमने कहा अरे हाँ ये तो हम भूल ही गए, नींद की चिंता नहीं करनी होती, मेरी नींद कम हुई मेरी नींद कम हुई, नींद अपना मार्ग खुद ढूंढ लेगी। तो ज्ञान की तो कितनी बातें ऐसी हम जो भूल जाते हैं, हमने ही जो दूसरों को सिखाई है कही है बताई है हम ही भूल जाते हैं। बाबा से बातें करनी है, बाबा को ही मुरली सुनानी है, बाबा तुमने आज ये किया अच्छा कहा, ये दिस वॉज अ गुड पॉइंट। बातें करना, मीठी मीठी बातें करना उसके साथ, तो ज्ञान डिस्कशन, उसके बाद डिजिटल वर्ल्ड हो गया ज्ञान डिस्कशन, उसके बाद अव्यक्त मुरली की स्टडी। अब ये चार बातें हैं अंतिम 20 में से जो रात को करनी है सोने से पहले, हमारा नींद से पहले ये चार बातें होनी चाहिए। अव्यक्त मुरलियों का थोड़ा सा अध्ययन, एक पैराग्राफ भी पढ़ लिया तो बहुत है, एक अनुच्छेद एक परिच्छेद। स्पार्क की बहुत सारी छोटी छोटी किताबें हैं, हम अपनी एक नई सीरीज चालू करें जो एक हमारे बिस्तर पर ही रखी रहे किताब तकिया के नीचे, सोने से पहले निकालो एक पैराग्राफ पढ़ो सोचो फर्स्ट। दूसरा डायरी लिखना या चार्ट लिखना, एक है चार्ट लिखना, उससे भी ज्यादा अच्छा जो हम करते हैं और हमको लगता है वो है डायरी लिखना। सुबह से लेकर रात तक आज हमने क्या क्या किया वो पूरा लिखता, ऊपर डेट लिखना 2 तारीख कहां पर है शांतिवन आबू रोड टाइम 9:30 PM बाबा कॉमा, और पूरी दिनचर्या लिखना, इतने बजे उठा ये किया ये किया ये किया, इससे मिला ये क्लास सुनी उस क्लास में ये पॉइंट्स मिली, उसके बाद में लास्ट में बाबा गुड नाइट। दिनचर्या लिखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन था, फ्रैंकलिन अमेरिका का फाउंडिंग फादर 17वीं शताब्दी में रोज अपनी दिनचर्या लिखता था, चार्ट था उसका 11 पॉइंट्स थे 13 पॉइंट्स, आज नम्र कितना रहा, क्रोध तो नहीं किया किसी को दुख तो नहीं दिया, ऐसे लिखता था वो। लोग भी डायरी इसको कहते हैं जर्नलिंग, जर्नलिंग करना है। उसके बाद में तीसरा योग, समर्पित कर देना है स्वयं को बाबा के सामने, आज अगर कुछ गलती हुई भी भूल चुक माफ कर देना फिर नहीं दोहराएंगे। और लास्ट योग निद्रा, 20वीं पॉइंट योग निद्रा, हमारा जो नींद का समय है ये बिस्तर है जिसमें हम सोए हैं, ये बेड स्पिरिचुअल बेड बन जाए, वो कमरा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर से भर जाए और हमारी नींद का समय भी योग का समय हो जाए। योग की ड्रिल करते 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 सो जाना है, सोते समय अंतिम संकल्प उठते ही प्रथम संकल्प होगा। तो सुबह से लेकर रात तक ऐसी ये 20 बातें हैं जिसमें 19-20 का अब अंतर ना रहे, बड़ा अंतर हो, जो गलतियां उस वर्ष में किया अब वो गलतियां फिर से ना हो। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहला अमृत वेला ठीक ठाक करना है, दुरुस्त करना है। दूसरा आदत डालनी है, अमृत वेले के तुरंत बाद डायरी में या मोबाइल में लिखो आज क्या क्या महत्वपूर्ण काम है। तीसरा एक्सरसाइज वॉकिंग जो नहीं करते चालू करें, प्रकृति के सानिध्य में जाए। चौथा मुरली, मुरली में 5 बातें बताइए। उसके बाद भोजन, भोजन की कुछ बातें बताइए। उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल, प्लानिंग करनी है, ट्रैफिक कंट्रोल 5 है क्या करूं इसमें, सुबह तो है ही पर ये दिन के 5 है। उसके बाद में ट्रैफिक रूहानी ड्रिल, छोटी छोटी ड्रिल करनी है, छोटी छोटी ड्रिल। स्पार्क में किताब है अनुभूतियां नाम की, वो ले सकते हैं, उसमें बहुत सारी ड्रिल्स है 108 ड्रिल्स है। उसके बाद में कर्मयोग, कर्म करते समय बाबा की याद रहे। उसके बाद में रिलेशनशिप, संबंध मधुर बनाने हैं। उसके बाद में सेवाओं में दिल से करनी है, निस्वार्थ भाव से करनी है, उसमें कोई नाम मानछान नहीं चाहिए, कर लिया बस ऊपर जमा हो गया, कोई मनुष्य हमारी स्तुति करे इन्होंने बहुत अच्छी सेवा की क्यों चाहिए, किसी की कोई स्तुति नहीं चाहिए। उसके बाद में परिस्थितियां, अचल अडोल बनाना है खुद को। उसके बाद में ट्रैवलिंग का समय, हमारा ट्रैवलिंग का समय कैसे योगयुक्त हो जाए उसकी प्लानिंग करनी है। उसके बाद में नुआशाम का योग ध्यान रखना है, डिजिटल वर्ल्ड, ज्ञान चिंतन और रात्रि की 3-4 बातें जो बताई। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, योग अभ्यास होगा और इस योग अभ्यास में ये सारी जो बातें बताई इसी को हम देखेंगे, वहां की जो हमारी दिनचर्या है वो यहां बैठकर देखेंगे और यहीं से उसमें रंग और कलर भरेंगे। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। सभी अलर्ट, एकाग्र, शरीर की और मन की सारी हलचल समाप्त। संपूर्ण चेतना रुकुटी के मध्य केंद्रित, एक अलौकिक मौन। अलौकिक शांति, अव्यक्त वायुमंडल का मौसम, सभा में अव्यक्त प्रवाह, संपूर्ण मौन, चेतना के अनंत सागर में चैतन्य का दिव्य प्रवाह। मैं हूं, चेतना के अनंत सागर में एक शक्तिशाली किरण, एक पवित्र लहर। मैं हूं, ऋषियों में राज ऋषि, तपस्वियों में महातपस्वी, ब्रह्मचारियों में शिरोमणि, मैं ज्योतिर्मयी आत्मा, शरीर से अलग, तत्वों से पृथक, दिव्य चैतन्य हूं। मैं आत्मा, इस अलौकिक सभा में परमात्मा अवतरण भूमि में बैठकर अपने उस जीवन को देख रही, एक विशाल पर्दे पर जो मेरा अलौकिक ब्राह्मण जीवन है, नव जीवन है, देख रही हूं 2019 को, देख रही हूं अपनी दिनचर्या को, और यहीं बैठे बैठे मैं आत्मा उसी दिनचर्या में शक्तियां भर रही, मेरा उठना उठते ही मेरे संकल्प, अमृत वेले मेरी स्थिति, इस अलौकिक वायुमंडल के बीच बैठते हुए सभी ब्राह्मणों की संगठित ऊर्जा मुझ में, और अपनी ये ऊर्जा मैं अपनी दिनचर्या की उस अवस्था को दे रही हूं जो मेरी अमृत वेला रहती है। अमृत वेले के बाद का समय मैं स्वयं में शक्तियां भर रही, दिनचर्या की श्रेष्ठ योजना, उत्कृष्ट प्लानिंग, फिर देख रही हूं स्वयं को प्रकृति के सानिध्य में, एकांत और मौन में, बाबा की याद में मगन, ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ चिंतन करते हो, विशाल पर्दे पर दिखाई दे रहा है वो सेवा केंद्र, वो क्लासरूम, कैसी मेरी अवस्था है मुरली सुनते समय, अनुभव हो रहा है भगवान का एक एक शब्द हृदय की गहराई में जा रहा है, ज्ञान का प्रकाश मन के अंधेरे कोनों में प्रवेश कर रहा है, देख रही हूं स्वयं को भोजन बनाते समय कैसी स्थिति है, खाते समय कैसी, किसकी याद में खा रही, स्वाद की गुलामी से मुक्त, केवल प्रभु प्रेम में डूबी हुई चेतना, राज्य अधिकारी की स्थिति, मैं आत्मा आगे बढ़ती हूं, कर्म के समय कैसी अवस्था है, अति व्यस्तता में ट्रैफिक कंट्रोल का क्या हाल है, दिनचर्या में रूहानी कवायद, ड्रिल कितनी बार हो रही, मैं आत्मा देख रही हूं अपनी ही सेवाओं को, सेवा केंद्र, घर, ऑफिस, सूक्ष्म स्थिति को। संबंध कैसे है? क्या संबंधों में मधुरता है? स्व का परीक्षण, यात्रा के समय क्या स्थिति है? महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय समर्पण कितना है? एक आंतरिक मौन, बाबा, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो। विकराल परिस्थितियां, कड़े हिसाब किताब, बाबा आ जाओ। देख रही हूं स्वयं की अवस्था यात्रा के समय, कैसा है मेरा नुमा शाम का योग? कितना नियमित, कितना शक्तिशाली? डिजिटल दुनिया की अनजानी राहों में कहीं खो तो नहीं गई चेतना? क्या ज्ञान को मैं सिमरन कर चर्चा करता हूं? क्या इतनी रुचि, इतना इंटरेस्ट मुझे ज्ञान चर्चा में है? मैं आत्मा देख रही हूं, मैं रोज कैसे सोती हूं? क्या व्यक्त मुरलियों का अध्ययन हो रहा है? क्या बाबा के सामने समर्पित हूं? क्या रोज का अपना चार्ट, अपनी डायरी लिखती हूं? दिखाई दे रहा है वो शयन कक्ष, वो शैया, मधुबन के संपूर्ण शक्तिशाली प्रकंपन। आज मैं आत्मा उस शयन कक्ष में भेज रही हूं। विकारों की चेष्टा मन में ना हो, सारा कमरा शक्तिशाली, प्योर। बीस इन सभी बातों में मेरा शक्तिशाली होगा। मधुबन की पावन भूमि पर यह संकल्प कि यज्ञ की आदि रत्न, दादियों के सम्मुख यह संकल्प, नुमा शाम के इस अलौकिक मौन में ब्राह्मणों के इस किले में बैठकर मैं आत्मा स्वयं बाप दादा को सम्मुख देखते हुए, दादिया साक्षी, अपने आप से संकल्प दृढ़ प्रतिज्ञ, जो गलतियां 19 में हुई देश में नहीं होगी। भोग विलासिता से स्वयं को मुक्त कर तापसी और तपस्वी जीवन में बनाऊंगा। बाबा मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। अंतर्मुक्ता की गुफा, गहन एकांत, बाबा तुम्हारे वरदानी हस्त और तुम स्वयं मेरे साथ। आत्मनिरीक्षण आत्ममंथन